पृष्ठ संख्या 126 नवम अध्याय लाइबनित्ज का शेष, जिनमें चैतन्य सुप्त है उन चिदड़ुओं को जड़ और जिनमें चैतन्य जागृत और स्वचेतन है उनको आत्मा कहा जाता है। एक व्यक्ति या प्राणी असंख्य चिदड़ुओं का समुदाय है। इस समुदाय में एक चिदड़ु प्रमुख होता है जो उस समुदाय की आत्मा कहा जाता है। यह आत्मा उस समुदाय का बाह्य शासक नहीं है। वस्तुतः चिदड़ुओं में तात्विक संबंध नहीं होता। संबंध होने का अर्थ है विकास के एक से स्तर पर होना। परंतु प्रश्न यह है कि शरीर और आत्मा में जो लौकिक संबंध दिखाई देता है और जो एक का दूसरे पर प्रभाव पड़ता दिखाई देता है, उसका क्या उत्तर है? सृष्टि के सामंजस्य का क्या कारण है? पृष्ठ संख्या 127। जब सभी चिदड़ु परस्पर निरपेक्ष और पूर्ण स्वतंत्र हैं, तब उनमें संबंध या सहयोग कैसा? तब जगत में नियम, व्यवस्था, एकतंत्रता क्यों हो सकती है? लाइबनित्ज के लिए यह समस्या बड़ी जटिल है और उन्होंने इसका समाधान ईश्वर की शरण लेकर किया है। ईश्वर ने चिदड़ुओं की सृष्टि की है। उन्होंने सबको स्वतंत्र बनाया है, किंतु साथ ही सबको एक तंत्र में बांध दिया है। एक चिदड़ु की स्वतंत्रता दूसरे की स्वतंत्रता का विरोध नहीं करती। प्रत्येक चिदड़ु अपनी स्वतंत्र सत्ता और विशेषता रखते हुए भी विश्व की एक तंत्रता को छूड़ नहीं करता। इस सार्वभौम ईश्वरी नियम को लाइबनित्ज पूर्व स्थापित सामंजस्य या प्री एस्टैब्लिश हार्मोनी कहते हैं। इसकी तुलना उन्होंने विविध वाद्य यंत्रों के एकतान संगीत या ऑर्केस्ट्रा से की है, जिसमें प्रत्येक वाद्य यंत्र अपना स्वतंत्र अस्तित्व और स्वर वैशिष्ट्य रखते हुए भी अन्य वाद्य यंत्रों के स्वरों से संगति रखता है और इस प्रकार एकतान संगीत की सृष्टि होती है। सब वाद्य यंत्रों का उद्देश्य एकतान संगीत है। उसी की पूर्ति वे अपने अपने स्वरों से करते हैं। इसी प्रकार चिदड़ु जगत की सृष्टि भी सो उद्देश्य की गई है। उनमें पूर्व स्थापित सामंजस्य है। सबका लक्ष्य इस सामंजस्य के साथ अपना अपना विकास करना है। चिदड़ुओं के अस्तित्व के पार्थक्य में लक्ष्य की एक तंत्रता है। उनके द्वैत में सामंजस्य का अद्वैत है। विश्व भेद में अनुचित अभेद या द्वैत विशिष्ट अद्वैत है। प्रत्येक चिदड़ु इस विराट का जीवित अंग है और विराट में जो कुछ हो रहा है वह प्रत्येक चिदड़ु में प्रतिफलित होता है। सारे चिदड़ुओं में एक ही चैतन्य विकास के विविध स्तरों में प्रकट होता है। अतः यह सामंजस्य असंगत नहीं है। सारे चिदड़ु एक ही चेतना के सूत्र में बधे हैं, जिसकी अभिव्यक्ति प्रत्येक चिदड़ु अपने स्वतंत्र और विशिष्ट रूप में करता है। ईश्वर ने पहले ही सृष्टि में यह सामंजस्य स्थापित कर दिया है। इस पूर्व स्थापित सामंजस्य के नियम से लाइबनिट्ज़ ने देहात्म समस्या का भी समाधान किया है। देह और आत्मा, जड़ और चेतना नामक दो विरुद्ध द्रव्य या दो विरुद्ध गुण नहीं हैं। सुप्त चेतन को ही जड़ कहते हैं, अतः इनमें कोई विरोध नहीं। चेतन के अतिरिक्त अन्य कोई सत्ता नहीं। देह के चिदड़ु समूह में एक केंद्रीय चिदड़ु जो अधिक क्रियाशील और अधिक विकसित चैतन्य होता है, आत्मा कहलाता है। सारे चिदड़ु अपने अंतरंग नियमों के आधार पर विकसित होते रहते हैं। कम विकसित चैतन्य वाले चिदड़ुओं का अधिक विकसित चैतन्य वाले चिदड़ुओं की ओर आकर्षण स्वाभाविक है। पृष्ठ संख्या 128। देह के चिदड़ु इस प्रकार क्रियाशील होते हैं कि ऐसी प्रतीति होती है मानो वे केंद्रीय आत्म चिदड़ु द्वारा शासित हो रहे हों। वास्तव में कोई चिदड़ु किसी अन्य चिदड़ु पर साक्षात प्रभाव नहीं डाल सकता, क्योंकि चिदड़ु छिद्र रहित हैं। प्रत्येक चिदड़ु अपने नियम पर चल रहा है। ईश्वर ने पहले ही सामंजस्य की स्थापना करके प्रत्येक चिदड़ु को इस प्रकार नियंत्रित कर दिया है कि उनमें संगत प्रतीति होती रहे। देह के चिदड़ु और आत्म चिदड़ु परस्पर निर्भर नहीं है और न इनमें कोई क्रिया प्रतिक्रिया ही हो सकती है और न ये समानांतर गुण है। इनमें केवल पूर्व स्थापित एक तंत्रता है। डेकार्त ने देह और आत्मा को दो स्वतंत्र द्रव्य मानकर उनमें क्रिया प्रतिक्रिया संबंध माना। ग्यूलिंग्स और मेले ब्रांच ने इनको निमित्त मात्र मानकर प्रत्येक ज्ञान और कर्म को ईश्वर का जो सख्त कारण है कार्य माना। इस प्रकार प्रत्येक ज्ञान और कर्म के लिए ईश्वर का हस्तक्षेप आवश्यक हो गया। स्पिनोजा ने इनको एक ही द्रव्य के गुण मात्र मानकर इनकी दो समानांतर धाराएं बतलाई। लाइबनिट्ज़ ने कहा कि न तो ये दो भिन्न द्रव्य है जिनमें क्रिया प्रतिक्रिया हो सके और न ये दो भिन्न गुण हैं जो समानांतर हों। इनमें न तात्विक भेद है न गौड़। ये तो एक ही चैतन्य की जागृत और सुप्त अवस्थाएं हैं। निमित्तवादियों के समान प्रत्येक ज्ञान और कर्म के समय ईश्वर का हस्तक्षेप आवश्यक बतलाना ईश्वर का उपहास करना है। ईश्वर समर्थ है और उन्होंने एक ही बार में इनमें पूर्व स्थापित सामंजस्य का नियम बना दिया, जिसके अनुसार ये सदा चलते रहते हैं और ईश्वर को बारंबार हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं रहती। देह और आत्मा दो घड़ियों के समान हैं जो सदा एक सा समय बताते हुए चलती हैं, ऐसा क्यों होता है? इस प्रश्न का उत्तर डेकार्त ने दिया कि वे एक यंत्र से परस्पर जुड़ी हुई हैं, जिसके कारण एक सी चलती रहती हैं। एक की क्रिया से दूसरी में उसकी प्रतिक्रिया होती है। स्पिनोजा ने कहा कि ये एक ही घड़ी के दो समानांतर छायाएं हैं, इसलिए एक सा समय बतलाती हैं। ग्यूलिंग्स और मेले ब्रांच ने कहा है कि घड़ी साज सदा उपस्थित रहता है, जो इनको हर समय मिलाता रहता है। लाइबनिट्ज ने कहा कि घड़ी साज इतना चतुर है कि उसने ये घड़ियां इसी प्रकार की बनाई हैं कि सदा एक सा समय बताती रहें। ईश्वर सृष्टिकर्ता है, उन्होंने संपूर्ण चिदड़ुओं की सृष्टि करके उनमें सामंजस्य स्थापित कर दिया है। सृष्टि का विकास क्रम ईश्वर द्वारा पहले ही निर्धारित हो चुका है। कोई चिदड़ू इस सार्वभौम नियम का व्यतिक्रम नहीं कर सकता। पृष्ठ संख्या 129। ईश्वर केवल पूर्णतम चिदड़ू या पुरुषोत्तम ही नहीं है, वे चिदड़ुओं के भी चिदड़ू या मुनाड ऑफ मुनाड्स हैं। वे चिदड़ु सृष्टि के ऊपर हैं। लाइबनिट्ज का उद्देश्य दर्शन का ईसाई धर्म के साथ सामंजस्य करना रहा है, अतः उन्होंने परम चिदड़ु को चिदड़ुओं का स्रष्टा और पूर्व स्थापित सामंजस्य का स्थापक भी माना है। यह स्रष्टा निरंकुश सम्राट नहीं है, किंतु स्वयं भी अपने एक तंत्रता के नियम से बद्ध है। ज्ञान तंत्र होने के कारण यह स्वतंत्र है। यह न अतंत्र है न परतंत्र। यह ब्रूनो या स्पिनोजा के ईश्वर के समान सृष्टि स्वरूप न होकर डेकार्त के ईश्वर के समान सृष्टि करता है। इसको लाइबनिट्ज ने अपने पर्याप्त कारणता नियम या लॉ ऑफ सफिशियंट रीजन से सिद्ध करते हैं। इस नियम के अनुसार वही वस्तु सत्य मानी जा सकती है जिसकी सत्ता के लिए पर्याप्त कारण या यथेष्ट हेतु विद्यमान हो। प्रत्येक वस्तु की सत्ता का पर्याप्त कारण होना चाहिए। यह कारण वस्तुओं की कार्य कारण श्रृंखला में नहीं मिल सकता, क्योंकि इस प्रकार चलते रहने पर अनावस्था दोष आता है। अंतिम कारण पर जिसका कोई अन्य कारण न हो रुकना पड़ता है। यह स्वयंभू या काज सुई जो अपना कारण स्वयं है और सृष्टि की कार्य कारण श्रृंखला से परे है, ईश्वर है। इस प्रकार सृष्टिकर्ता की सिद्ध के लिए पर्याप्त कारण विद्यमान है। लाइबनिट्ज का ईश्वर डेकार्त के ईश्वर के समान सृष्टिकर्ता तो है, किंतु जिस अर्थ में डेकार्त ईश्वर को सृष्टि के पार मानते हैं, लाइबनिट्ज उस अर्थ में नहीं। लाइबनिट्ज के अनुसार ईश्वर मानवीय बुद्धि के पार होने के कारण सृष्टि के पार है। ईश्वर हमारी अपेक्षा पर है। जैसे हम पशु की अपेक्षा पर हैं, या जैसे पशु वनस्पति और जड़ जगत की अपेक्षा पर है। पर का अर्थ है ज्ञान का अधिक विकास। ईश्वर सबके ऊपर या पर है, क्योंकि उनका ज्ञान पूर्ण विकसित है। सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान और पूर्णतम ईश्वर की यह सृष्टि भी सर्वोत्तम है। इससे उत्तम जगत की सृष्टि नहीं हो सकती थी, अन्यथा ईश्वर अवश्य उसे सृष्ट करते। लाइबनित्ज को जीवन में काफी सफलता मिली थी, इसलिए उन्हें यह जगत की सर्वोत्तम दिखाई दिया। जगत में जो दुख और अभाव प्रतीत होता है, वह हमारे अज्ञान के कारण है। जैसे अंधकार से प्रकाश का महत्व है, वैसे ही दुख से ईश्वरीय आनंद का महत्व है। लाइबनित्ज डेकार्त और स्पिनोजा के समान बुद्धिवादी हैं। उनके समकालीन लॉक इंग्लैंड में इंद्रिय अनुभववाद की प्रतिष्ठा कर चुके थे। लाइबनित्ज ने डेकार्त और लॉक के बुद्धिवाद और इंद्रिय अनुभववाद में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयत्न किया, और इस अंश में वे कांट के पुरोगामी बने। पृष्ठ संख्या 130। डेकार्त के अनुसार ज्ञान सहज और इंद्रिय निरपेक्ष है। लॉक के अनुसार ज्ञान इंद्रिय अनुभव से ही उत्पन्न होता है। लाइबनित्ज ने कहा कि ज्ञान वास्तव में सहज और इंद्रिय निरपेक्ष ही है। ज्ञान की सार्वभौमता और निश्चयात्मकता इंद्रिय अनुभव से कदापि नहीं आ सकती, किंतु दोनों में विरोध नहीं है, क्योंकि इंद्रिय अनुभव भी ज्ञान का ही क्षीण स्वरूप है। यह है लाइबनित्ज का चिदड़ु दर्शन। इसमें लाइबनित्ज ने विभिन्न विरोधी मतों में दार्शनिक सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया है। कुछ अंश में वे सफल हुए हैं, किंतु बहुत अंश में असफल। लाइबनित्ज का दर्शन विरोधों का पिटारा है। इस विरोध पुंज के कुछ विरोधों का परिहार उन्होंने किया है, किंतु बहुत से विरोधों का समाधान करने में वे असफल रहे हैं। इस असफलता का मुख्य कारण है लाइबनित्ज का प्रपंचवाद या प्लूरलिज्म। उनका लक्ष्य था स्पिनोजा के द्रव्य के सर्वग्रासी प्रभाव से चिद-चित रूप विश्व की रक्षा करना। इसलिए उन्होंने इस द्रव्य को खंड खंड करके चिदड़ुओं के रूप में बिखेर दिया, और फिर उन टुकड़ों को समेट कर ईश्वर का नाम दे दिया। लाइबनित्ज प्रत्येक चिदड़ु को स्वतंत्र और निरपेक्ष भी रखना चाहते हैं, और समस्त चिदड़ुओं को एक सूत्र में बांधना भी चाहते हैं। यह कार्य असंभव है। दो घोड़ों पर एक साथ सवारी नहीं की जा सकती। स्पिनोजा का यह कथन कि द्रव्य निरपेक्ष होने के कारण अद्वितीय है, और इसके अतिरिक्त अन्य किसी की स्वतंत्र सत्ता नहीं हो सकती, सर्वथा सत्य है। असंख्य निरपेक्ष वस्तुओं की कल्पना असंगत है, उनमें किसी प्रकार का संबंध स्थापित नहीं हो सकता। लाइबनित्ज को इनका ज्ञान था और इसीलिए उन्होंने इस समस्या को सुलझाने के कई असफल प्रयत्न किए, किंतु समस्या सुलझने के बजाय उलझती ही गई। लाइबनित्ज भरसक प्रयत्न करके भी अपने चिदड़ू चंद्र को विरोध राव के खग्रास ग्रहण से नहीं बचा सके। चैतन्य या चित शक्ति के अतिरिक्त अन्य कोई सत्ता नहीं है और जो कुछ है वह चित शक्ति का ही विविध स्तरों पर विकास मात्र है। लाइबनित्ज का यह कथन सत्य है, किंतु इसका तात्पर्य यही है कि समस्त चिदड़ू जगत चित शक्तिमान ईश्वर की विविध रूपों में प्रतीति या आभास मात्र है। चिदड़ुओं की स्वतंत्र सत्ता या शक्ति नहीं हो सकती। चिदड़ुओं का भेद व्यवहारिक है, पारमार्थिक नहीं। सब चिदड़ु ईश्वर के विभिन्न प्रतिबिंब हैं, सब सापेक्ष हैं, निरपेक्ष नहीं। यदि यह स्वीकार नहीं और लाइबनित्ज को यह स्वीकार नहीं है तो ईश्वर की कोई आवश्यकता नहीं। पृष्ठ संख्या 131। चिदड़ुओं के पारस्परिक संबंध की आवश्यकता नहीं, जगत की आवश्यकता नहीं और फलतः ऐसे चिदड़ुओं की भी आवश्यकता नहीं। ऐसी दशा में लाइबनित्ज के दर्शन में विरोधों का आना अनिवार्य है। जैसे पहला, चिदड़ु की स्वतंत्र सत्ता या शक्ति है और चिदड़ुओं में पूर्व स्थापित एक तंत्रता है। दूसरा, चिदड़ु अनादि अनंत और नित्य है और चिदड़ु ईश्वर सृष्ट है। तीसरा, चिदड़ु छिद्र रहित है और चिदड़ु समस्त विश्व को अपने भीतर प्रतिबिंबित करते हैं। चौथा, चिदड़ु मौलिक स्वरूप में एक हैं और चिदड़ु विकास के स्तरों में विभिन्न हैं। पांचवा, चिदड़ु पूर्ण हैं और चिदड़ुओं में अपूर्णता का तारतम्य है। छठवा, चिदड़ु समस्त विश्व का जीवित दर्पण है और चिदड़ु के अतिरिक्त विश्व में अन्य कुछ नहीं या जो इस दर्पण में प्रतिबिंबित हो सके। सातवां है, चिदड़ु में स्वतंत्र चित शक्ति है और चिदड़ु में शक्ति को रोकने वाली सूक्ष्म जड़ता है। आठवां, चिदड़ुओं में वस्तुतः कोई संबंध नहीं हो सकता और चिदड़ु परस्पर सामंजस्य से संबंधित हैं। नौवां, ईश्वर स्वयं एक विशिष्ट चिदड़ु है और ईश्वर चिदड़ुओं के सृष्टा हैं। दसवां, ईश्वर पूर्व स्थापित सामंजस्य के विधाता हैं और ईश्वर स्वयं इस नियम से बद्ध हैं आदि। स्पष्ट है कि लाइबनित्ज के प्रपंचवाद में ईश्वर के लिए वस्तुतः कोई स्थान नहीं। पूर्व स्थापित सामंजस्य का नियम यह काम चला लेगा और इस पूर्व स्थापित सामंजस्य के लिए भी उनके दर्शन में कोई स्थान नहीं, क्योंकि छिद्र रहित निरपेक्ष चिदड़ुओं को सामंजस्य की आवश्यकता ही नहीं। चिदड़ु प्रतिबिंबित किसे करते हैं? उत्तर है विश्व को। विश्व क्या है? उत्तर है चिदड़ु और उनके प्रतिबिंब। परंतु बिंब के अभाव में प्रतिबिंब किसका होगा? लाइबनिट्ज का विश्व दर्पणों का समूह है, जिसमें प्रत्येक दर्पण अन्य सब दर्पणों को अपने भीतर प्रतिबिंबित कर रहा है। ये निरपेक्ष कहे जाने वाले चिदड़ु वस्तुतः सापेक्ष चित्खंड हैं और सत्य निरपेक्ष के अभाव में न इनमें कोई संबंध हो सकता है और न तारतम्य। उनको विवश होकर इस कठिनाई को दूर करने के लिए ईश्वर की कल्पना करनी पड़ी, किंतु उनका ईश्वर उन्हीं की कल्पना की उपज है, वास्तविक ईश्वर नहीं। लाइबनिट्ज के दर्शन में आने वाले विरोधों का एकमात्र परिहार है चिदड़ुओं का व्यवहारिक भेद और पारमार्थिक अभेद, अर्थात समस्त चिदड़ुओं को एक ही निरपेक्ष चित्त शक्ति के आभास मानना। और लाइबनिट्ज को यह समाधान किसी दशा में स्वीकार नहीं। फलतः उनका दर्शन बौद्धिक अस्थिपंजर है, जीवित शक्ति नहीं। पृष्ठ संख्या 132। इतने विरोधों के होते हुए भी लाइबनिट्ज का दर्शन अपना महत्व रखता है। उनकी बहुमुखी प्रतिभा प्रशंसनीय है। उनका विविध मतों में सामंजस्य करके उनको अपने दर्शन में अपनाने का प्रयत्न असफल होते हुए भी सलाध्य है। उनके दर्शन की छाप किसी न किसी अंश में उनके बाद आने वाले सभी पाश्चात्य दार्शनिक पर पड़ी है, और यह बात कम महत्वपूर्ण नहीं। नवम अध्याय समाप्त।